Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shvetashvatara Upanishad, presented by Acharya Swami Sri Bhagavatanandaji Saraswati Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
इसलिए दोनों को मिलाया जाता है तत्वमसि ऊपर शांत जगत जीव जगत जीव शिष्य आचार्येश्वर भ्रमम स्वतः सिद्ध मनाद्यंतम
परिपूर्ण महम
जगत और जीव शिष्य आचार्य ये जो भ्रम है ये भ्रम उपशांत हो जाता है जब जब ज्ञान हो जाता है तत् और तुम दोनों एक कर लिए जाते हैं तब फिर जगत जीव नाम की चीज शिष्य आचार्य ये भ्रम दूर हो जाता है और सुता सिद्ध अनादि और अनंत परिपूर्ण रूप से महामाने तेज पैदा होता है वही मैं हूं उसको समझना चाहिए। देखो ये जगत जीव और शिष्य आचार्य को क्यों ब्रह्म माना गया कोई बता सकता है? ये ब्रह्म है कि जगत अलग है जीव अलग है शिष्य अलग है आचार्य अलग है वो तो जो तुम ब्रह्म सो हम ब्रह्म। लेकिन ये कहा गया है कि यावत जीवम सुखम जीवेत यावत जीवेत सुखम जीवेत जब तक जिए तब तक दुखी रहे। वेदांतो गुरु ईश्वरा वेदांत गुरु ईश्वर को माने रहा है। वेदांत दर्शन ईश्वर और गुरु ये अलग अलग होते हैं। ये बात तो ठीक है कि भ्रम है जगत जगत का जीव का शिष्य का आचार्य का ये भ्रम है। ये भ्रम दूर हो जाता है जब उपशांत हो जाता है जब सुता सिद्ध और आदि अनंत से रहित परिपूर्ण रूप से तेज जागृत होता है तब। इसका मतलब यह है कि असल में जगत का भ्रम इसलिए है कि अध्यस्त पदार्थ होता ही नहीं है। अधिष्ठान में अध्यस्त जैसे रस्सी में सांप रस्सी में सांप कभी दिखा है
नहीं
भ्रम हुआ है कभी भ्रम में दिखता है भ्रम काल में वही सत्य मालूम पड़ता है। तो जो दिखता है वो कहीं सत्य होता है
नहीं।
हाँ जो दिखता है वो सत्य थोड़ी होता है। ऐसे तो दिखता है सांप दिख रहा है ब्रह्म में तो भ्रम समझना चाहिए। ऐसे कभी कभी सूरज पश्चिम में उदय होने लगता है तो का पश्चिम में थोड़ी है कह जो ब्रह्म है उस समय ब्रह्म काल चल रहा है। तो ये ब्रह्म है ये जगत क्योंकि अधिष्ठान में अध्यस्त होता ही नहीं है। अध्यास वो कहलाता है जो दूसरे का गुण दूसरे में ले जाए जैसे गर्म पानी 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 का ठंडा स्वभाव है शीतले मधुर शीतल जल जल का जले मधुर शीतल। अच्छा और उष्णता जो उसमें आई है जो आग से आई है आग का धर्म जल में कर दिया गया थोड़ी देर रख दो तो ठंडा हो जाएगा जल अपने अपने आ जाएगा। थोड़ी देर रखने से आता है तो स्वतः सिद्ध माने स्वयं प्रकाश स्वयं प्रकाश आत्मा तेज रूप हम है विविध परिच्छेद शून्यम परिच्छेद माने सीमा सीमा से शून्य माने सजाती विजाती शून्य हम हैं। लक्ष्मीधर कवे सूक्तिम शरदंभोज संभ्रता
अद्वैत मकरंदोयम
विद्वद् भृंगै निपीयताम् लक्ष्मीधर कवे सूक्तिम्। लक्ष्मीधर कवि इसके ग्रंथकर्ता लक्ष्मीधर हैं, ग्रंथकर्ता ग्रंथ के बनाने वाले लक्ष्मीधर जी हैं। लक्ष्मीधर के कवि की जो सूक्तियां हैं वो शरद ऋतु में अम्भोज माने कमल से भरे हुए, शरद ऋतु में कमल खिलते हैं अच्छे हैं। शरद ऋतु की विशेषता है, और ऋतुओं में जैसे जाड़े में कोहरा होता है, गर्मियों में धूल बहुत होती है, और बादल वर्षा में बादल बहुत होते हैं, तो ये स्वच्छ नहीं होते हैं। चंद्रमा आकाश और जल इन तीनों में कोहरा और धूल और बादल छाए रहते हैं, इसलिए स्वच्छ नहीं होता। शरद ऋतु में एक ऐसी विशेषता है, शरद ऋतु में जल भी, जल को जीवन बोलते हैं, जल और आकाश को हृदय बोलते हैं, चंद्रमा को मन बोलते हैं, हृदय आकाश खुल जाता है, प्रसन्नता हो जाती, मन प्रसन्न है तो सब प्रसन्न है, चंद्रमा मन को बोलते हैं। तो मन और जीवन, मन और हृदय जब खिल जाता है तो जीवन भी खिल जाएगा, जीवन स्वच्छ हो जाता है, निर्मल हो जाता है। तो जीवन को स्वच्छ करने के लिए शरद ऋतु बताई। एक कैसे लक्ष्मीधर कवि की सूक्तियां कैसी हैं, शरद ऋतु के अम्भोज माने कमल के संवृत माने कमल से भरे हुए। अद्वैत मकरंदोयम, मकरंद रस कहलाता है, जो फूल में अंदर होता है वो मकरंद रस कहलाता है। अद्वैत मकरंदोयम विद्वत भृंगई निपीताम, विद्वान जनों को पीना चाहिए, निपीयताम माने पीना चाहिए। अब विद्वत भृंग विद्वान लोग, अधिकारी लोग, और अधिकारी इसके कौन होते हैं, जो चतुर्थ साधन संपन्न हो, तीव्र वैराग वाले हों, वैराग्य वो कहा गया ना, कौन थे वैराग्य गृह थे, वैराग से ग्रहण होता है, तो ये विद्वत भृंग पूरा हो गया है। अब कल से वो चलेगा उपनिषद। अच्छा, तो एक बात कर लें, उपनिषद का उपमाने पास में होता है, और नीमाने नितराम सदली विषण गत्यवसाधनेशु माने अविद्या को ढीला करने के लिए, अविद्या को दूर करने के लिए, अविद्या जो अज्ञान है उसको दूर करने के लिए उपनिषद होता है। उपनिषद का अर्थ क्या है, उप नी और सदरी धातु है विषरण ढीली करने में है? तो उप माने पास में बैठ के, और नी माने नितराम सदरी विषरण गत्यवसाधनेशु, जिसके पढ़ने से जिसके सुनने से अविद्या अपनी नष्ट हो जाए उसको कहते हैं उपनिषद। अविद्या नष्ट हो जाए, अविद्या नष्ट कैसे हुए, जैसे अभी आपने पढ़ा कि सच्चिद आनंद एक शब्द है, अगर पर्यायवाची मानोगे सतई चिद है, चिद ही आनंद है, सत्य ही ज्ञान है और अनंत अनंत है, एक मान ले तो पर्यायवाची शब्द दोनों की जरूरत क्या आ रही, जब पर्यायवाची शब्द हैं तो दोनों की जरूरत नहीं है। अच्छा, यदि 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 कहो कि अलग अलग हैं, तो अलग अलग हैं तो सत्यता ज्ञातता और अनंतता नष्ट हो जाएगी, कई जड़ में थोड़ी सत्ता होगी, सत्ता तो चेतन में होती है, आनंद भी चेतन में निकलता है, जड़ में कहां से आनंद आएगा, जड़ जितना दृश्य वर्ग है विषय वर्ग है उसमें आनंद नहीं है, आनंद जैसे संतरा थोड़ी देर के लिए रख दो खराब हो जाएगा, संतरा मौसमी ये खराब हो जाएंगी, इसका मतलब ये है कि उसमें विषय में आनंद नहीं है, विषय में रस भी नहीं है। संयोग में कह दो संयोग हो जाता है, जब इंद्रिय का विषय के साथ संयोग होता है तो होता होगा, तो मुर्दा के में चेतन नहीं है, मुर्दा की जीभ पर रखे धरो रसगुल्ला, जरा स्वाद आएगा उसको, चेतन में स्वाद आता है। तो इसी तरह सत्यम ज्ञानवंतम ब्रह्म सच्चिदानंद, ये एक शब्द है, आया नहीं नाना रूप नहीं, एक एक वस्तु मानो, वस्तु एक है, ईश्वर और जीव की एकता बताई, उसमें जीव में ईश्वर में इतना अंतर है कि जैसे जीव बताया गया बीज की तरह है, जीव में सात बातें हैं, बीज में सात बातें हैं, तो जैसे जीव में सात बातें कौन कौन बताई, बीज बताया, ब्लॉक प्रमुख से आया बीज बहुत अच्छा है, लेकिन उसके लिए जमीन चाहिए, जमीन अच्छी हो, बुद्धि चाहिए, जहाँ सुमति तहाँ विपत्ति निदाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति लाना, जहाँ सुमति होती है वहाँ संपत्ति तो ऐसी बुद्धि तो हो, बुद्धि होनी चाहिए, बुद्धि में वो बुद्धि अमेरिका में और अफ्रीका में आदमी तो वनमानुष भी होता है, बड़े भाग मानुष चन पावा थोड़ी अकेले गाय के बता दिया, बड़े भाग मानुष चन पावा उसकी बुद्धि अच्छी होनी चाहिए, सुमति हो, सुमति भूमि थल हृदय अगाधु। अच्छा फिर इसके बाद बताया फूल फल निकलना चाहिए, संयम नियम से रहा है, वो सत्संग भी करता है और संयम नियम है नहीं, तो संयम नियम भी होना चाहिए, संयम नियम और फल ज्ञान होना चाहिए, आत्म ज्ञान हो, अपने को कम से कम देह तो न माने, बोले मैं कौन हूं, देह का परिचय दे दिया, सब अमुक जगह पैदा हुई अमुक जगह नष्ट हुई, यहाँ आनंद कहा गया, आनंद को इसको भी तो कहा जाता है नष्ट हुआ आनंद उबाड़ेगा, कहते इसको नहीं कहा जाता उपाधियों को कहा जाता है, आनंद जिससे आता है निमित्त, आनंद को बताया कि साधन मान लो, साधन मानने से क्या हानि होगी, कह साधन मानने माना नहीं जा सकता, साधन मानने से अनात्म पदार्थ हो जाएगा, जैसे नैया गुण माना कि गुण है ज्ञान का आश्रय, ज्ञान का आश्रय, ज्ञान का आश्रय आत्मा है, ऐसा नहीं है, ये सृष्टि नहीं होगा ज्ञान का आश्रय नहीं होगा, ज्ञान ज्ञान स्वरूप ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान स्वरूप है, ऐसे लगाना चाहिए, ये उपनिषद का अर्थ है, जिसको पढ़ने से जिसको सुनने से जिसको मनन करने से अविद्या खत्म हो जाए, अविद्या ढीली पड़ जाए, उसको उपनिषद कहते हैं, उपनिषद है, उसे तो 108 हैं, उसे 9 हैं जिनकी शंकराचार्य ने व्याख्या की है, कट के न प्रश्न ये दिए हैं छांदोगों को, ये उपनिषद हैं दो बड़ी बड़ी, और कट मुंडक श्वेता सुतर उपनिषद, श्वेता सुतर श्वेत अश्व कौन हुआ, उसे इतर खच्चर, तो ऐसे सभी है मुंडक और मांडूक, मांडूक माने मेढक होता है, इसका मतलब ये हुआ कि जो उसमें गधे में आत्मा है वही आत्मा हमारे में है, ये अर्थ है इसका, आत्मा में कोई भेद नहीं है, एक ही आत्मा है, सुन चे सुपा के चे पंडिता समदर्शिना, पंडित समदर्शी होता है, ए देख है कि किस में क्या है, आत्मा एक है, आत्मा अनेक नहीं है, गधे में जो आत्मा है वही आत्मा हमारे में है, हम सड़क पर खड़े हों और हम निकल रहे हैं भाई, कोई बीड़ी पीने न निकले ऐसा हो सकता है, बीड़ी भी पिएगा सिगरेट भी पिएगा और शराब की दुकान भी होगी, दुकानें बहुत सी होंगी, लेकिन आप अपने लक्ष्य पर चले जाएं। लक्ष्य पर जाएंगे तो आपको लक्ष्य प्राप्त होगा, गंतव्य स्थल प्राप्त होगा। इसलिए आपको चाहिए कि आप दूसरे को न देखें, दूसरे के क्या दोष, अन्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त। कहते हैं दूसरे के दोष या गुण दूसरे को न देखो, अपने देखो। दूसरे के दोष देखने से वही जितने परिश्रम से देख सकोगे वही दोष अपने में भी मिल जाते हैं। तो अपने में मिल जाते हैं तब दूसरे को देखने की क्या जरूरत। अन्य से दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा, उनको छोड़ दो, दोष दूसरों को न देखो। जब दूसरों के दोष नहीं देखोगे तब अपने पवित्र रहोगे, शुद्ध रहोगे। और हमने देखा वैरागी लोग जब हरिद्वार ऋषिकेश जाते हैं और उन कुटियों को आश्रमों को देखते हैं तो लालच हो जाता है, हम भी ये आश्रम बनाते हैं, क्या बताएं क्या बताएं, आ जाता है वहां देख देख के वो गुण देख के। हाँ ऐसे वैरागी लोग हैं, बोले वो लेता है तो हम भी लेने लगे। वैरागी लोग लेते नहीं थे, पहले विरक्त रहते थे, पैसा नहीं लेते थे, छूते नहीं थे। अब तो एक सज्जन है संस्कृत विश्वविद्यालय में, अभी हैं, वेतन मिलता है, वैसे गांठ पे कह इसमें बांध दो, इसमें बांध दो, और बांध दें वैसे चेक छोड़ देते बैंक में जाके, ले हम छूते नहीं हैं। अरे तो छूते नहीं तो छूना तो बराबर हो गया। बैंक में उसे बैंक मैनेजर से कहते हैं इसको छोड़ ले भैया, हम छूते नहीं है, ऐसी छूने से तो छूले सो ठीक है। तो उपनिषद का अर्थ है अविद्या, ये जो अविद्या है अविद्या के कारण मालूम पड़ता है अविद्या आश्रित जीव है, और अविद्या आश्रित जीव और विद्या आश्रित ईश्वर। तो विद्या विद्या और अविद्या दोनों अलग कर दे, सीमा अलग कर दी, परिच्छिन्नता अलग कर दी। अब आया परिच्छिन्नता और परिच्छिन्नता और इनको अलग कर दो, साबल्य माया कहलाती है, निर्मल बुद्धि हो जाए, अखंड एक रस हो गए। इस एकता को बनाने के लिए उपनिषद प्रारंभ हुए, बड़ा बढ़िया उपनिषद का प्रारंभ है मंगलाचरण से। ब्रह्म का वर्णन आया पहले, तो ब्रह्म का वर्णन आप लोग सुनेंगे, बड़ा रसदार है, आनंददायक है। ये तो मकरंद इसलिए कर दिया अद्वैत मकरंद कि थोड़ा था और बड़ा रसदार है, सरल भी है, तो इसलिए आप लोगों को, आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो कम से कम आते तो हैं इस फर्स्ट क्लास जिम क्लास में। हाँ ये कोई मामूली बात थोड़ी है, पहले कभी जिज्ञासा किसी को होती थी तो जाता था वहां, अब खुदे आ जाते हैं, आप लोगों को सुनाते हैं। वेदांत बाजार में आ गया, वेदांत बाजार की चीज नहीं है, वेदांत तो गोष्ठी की चीज है, एकांत में मनन करने की, चार आदमी पांच आदमी बैठे और मनन करें। और भक्ति पक्ष ऐसा है कि वो समाज में सुनाने लायक है, समाज में सुनाने लायक। सत्य वस्तु को जानने पर आपका कोई कष्ट नहीं रहेगा। वास्तव में अगर कष्ट को दूर करना है, निवृत्त करना है, तो देह से पहले हटो, देह से हटो, इंद्रियों से को संयमित करो और मन को स्थिर करके बुद्धि को लगा के ये वेदांत समझो। वेदांत का अर्थ है आत्मा ज्ञान। आत्मा का ज्ञान जब आपको हो जाएगा कि मैं ही सच्चिदानंद हूं तो कोई कष्ट नहीं होगा। नहीं तो क्षण क्षण आदमी रोता है, चिल्लाता है, दुखी होता है, सुखी होता है, कभी दुख आया कभी सुख आया, इन पड़ा रहता है। इससे तो अच्छा ये है कि ये जीवन में निश्चय कर लो कि हमें उपनिषद पढ़नी है, हमें अपने को सत्य रूप से जानना है, पहचानना है। अगर अपने को सत्य जान गए तो फिर क्या लाभ होगा? तो कोई आपत्ति आएगी तब तुरंत ध्यान आ जाएगा, अरे जय पे आपत्ति आई, हमारे ऊपर थोड़ी आई, ये तो कम से कम विवेक हो जाएगा। विवेक बहुत बड़ी चीज है, विवेक रक्षा। आनंद माला में आया, आनंद माला एक उपनिषद है, बहुत छोटी जो उपनिषद है, उसमें आया विवेक रक्षा। विवेक रक्षा करता है। देखो इंदिरा गांधी मारी गई और गार्ड बॉडी गार्ड बने रहे, बॉडी गार्ड या बंदूक थोड़ी रक्षा करते, रक्षा करता है विवेक। नहीं तो क्यों मारी जाती? जिनके रक्षक थे वही भक्षक बन गए। तो उपनिषद का ये अर्थ होता है, उपनिषद माने उप और नी उपसर्ग है, और सदरी विषण गतव साधनेशु, जो अविद्या को ढीली करे, अविद्या को नष्ट कर दे, अविद्या को मार दे, जिस अज्ञान अविद्या में हम पड़े हुए हैं वो, और जागृत स्वप्न सुषुप्ति जिन अवस्थाओं में आती है वो समझे आत्मा की अवस्थाएं, अरे बुद्धि की अवस्थाएं, बुद्धि उस समय सुषुप्ति में नहीं रहती है, जब जगती है तो साक्षी के साथ तादात्म्य करके बता देती है कि आज हम सुख से सोए, कुछ नहीं जाना। सुख से सोए ये आनंद कहाँ मिला? सुषुप्ति में। अगर जागृत अवस्था में सुषुप्ति का चिंतन करने लगे तो बहुत अच्छा है। जागृत अवस्था में सुषुप्ति का चिंतन कि अंतःकरण कहीं लीन हो गया है और अंतःकरण मिल नहीं रहा है, अंतःकरण लीन है और हम सुषुप्ति को देख रहे हैं, सुषुप्ति को देख रहे हैं, अंतःकरण लीन हो रहा है, कैसे लीन होता है, क्या होता है, बड़ी देर तक देखते थे, देखते रहो देखते रहो, देखने में अंत में आ जाएगा। तो सुषुप्ति का ध्यान करना चाहिए जागृत में, जागृत में सुषुप्ति का ध्यान करने से समाधि लग जाती है। समाधि सुषुप्ति में इतना ही तो अंतर है, समाधि प्रयत्न से होती है और सुषुप्ति गैर प्रयत्न से होती है। थके माधे आए सोए गए, गहरी नींद आ गई, उस समय सपना नहीं होता है, सपना उस समय नहीं होता है, उस समय तो केवल शांत वातावरण होता है। तो इसके लिए बताए ये नाम इसलिए रखा गया कि मुंडक मांडूक इनमें क्या भेद है, माने उसकी आत्मा हमारी आत्मा एक है, हमें कोई अंतर नहीं है। समदर्शन होना चाहिए, समवर्तन यद्यपि मना किया गया है, समव्यवहार नहीं होता है, समदर्शन होता है। समदर्शन सियावर रामचंद्र की।